تفسیر سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا سنیریو. سورت کے آغاز میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ منافقین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو زور بازو سے نہیں ہرا سکتے, غزوہ بدر سے لے کر خندق تک ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہی فتح ہوتی دکھی, تو اس سے منافقوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف گرج تھا, وہ اور بڑھ گیا, وہ فتنوں کی تلاش میں تھے. سن 5 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے آپ کے نکاح کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک الزام لگا چکے تھے, جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑا ایک طوفان برپا ہوا. اب اس معاملے کو گزرے ہوئے ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ غزوہ بنو مزدلق, دو نام ہیں اس غزوے کے, جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو دونوں نام سامنے آ سکتے ہیں, غزوہ بنو مزدلق بھی کہتے ہیں تو اسے آتا ہے, جیسے طلاق ہے نا اس طرح طلق, یہ قبیلے کا نام تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کا غزوہ جو تھا بنو مزدلق کے لوگوں سے ہوا تھا. اسی طرح اس غزوے کا ایک دوسرا نام ہے غزوہ مراسی, میم رو سین یا عین, عین اینڈ پہ آتا ہے, تو مراسی نام کا کنواں تھا, دونوں ایک ہی غزوے کے نام ہیں. تو مسلمان وہاں جانے کی تیاریوں میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالا, اور قرعہ اس وقت ڈالنا بالکل جائز ہے جبکہ اس پہ شرط نہ ہو, یعنی گیمبلنگ یا جوئے میں اور قرعے میں شرط, لاٹری میں کیا فرق ہے, کہ قرعہ جب دو جائز چیزوں میں ایک کو چوز کرنا ہو. اب آپ ایک کو کہتے ہیں تو دوسرے کا دل برا ہوتا ہے, دوسرے کو کہتے ہیں تو ایک کا دل برا ہوتا ہے, تو پھر آپ ٹاس کر لینا یا قرعہ اندازی, اس کی اجازت ہے. یہ حضرت یونس کے قصے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے اور ادھر بھی ملتا ہے. تو اللہ کے نبی نے قرعہ جب ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر قرعہ جو تھا ڈالا. سن 6 ہجری کا یہ موقع تھا. حضرت عائشہ آپ کے ساتھ اس سفر میں چلی گئیں, غزوے سے واپسی کا سفر تھا. اب آپ دیکھیے کہ غزوہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا, جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ پر ایک تہمت لگی جس کا ذکر آج کے سبق میں, وہ میں آپ کو آیتیں شروع کرنے کے ساتھ بتاؤں گی. دوسری چیز آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے تشیع الفاحشہ کیا ہوتی ہے. نشر و اشاعت کا لفظ آپ نے بہت ہی دفعہ سنا ہوگا, آج کی نشریات میں یہ ہے اور یہ کریں گے اور اس کی تشہیر ہے, اس کو اسلام تشیع کہتا ہے, یعنی شہرت دینا, پھیلانا, پبلسٹی میڈیا میں اس کو کامن کرنا. تو بے حیائی کو عام کرنے میں لوگوں کی کیا کوششیں ہیں اور اسلام کے اوپر آج اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے, بہت بنیادی ٹاپک ہی آج کے سبق کا یہی ہے کہ آج ہم کیسے بے حیائی کو پہچانیں اور اس کو ختم کر سکیں. تیسری چیز جو آج کے سبق میں ہے ہمارے پاس ہے وہ اخلاقی تربیت ہے. گو کے واقعہ بہت ہی تکلیف دہ تھا, اللہ کے نبی کے گھرانے پہ براہ راست اس کی چوٹ پڑی, لیکن اتنی بڑی آزمائش میں نبی اور ان کی بیوی کو ڈال کر اللہ نے معاشرے کی تطہیر, یعنی اس کی پاکی اور اس کی کلینلینس کا اہتمام کیا. بہت ہی خوبصورت مورلز ہیں معاشرتی زندگی کے, جس میں سنی سنائی بات کو آگے نہ کرنا, کسی اچھے انسان کے بارے میں کوئی بری بات اگر کان میں پڑ جائے تو یہ سوچ لینا کہ کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے, کیا اس چیز کی مجھے اس سے امید ہے, اور بے ثبوت باتوں کو آگے سے آگے کرنا یہ اللہ کی نظروں میں کتنا برا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. پھر اسی طرح شیطان کے قدموں کی پیروی سے کیا مراد ہے, اور فحش اور منکر کا شیطان کس طرح حکم دیتا ہے. پھر ایک بہت ہی خوبصورت ادب جو آج کے سبق سے ہم سیکھیں گے, دشمنوں پہ انسان کا رحم کرنا. وہ لوگ جو آپ کو تکلیف دیں, ستائیں, پریشان کریں, آپ ان کو پہلے سے بھی زیادہ دینے لگ جائیں. یہ ابو بکر کے اور مستہ کے واقعے سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جوڑے کیسے بنتے ہیں, کیسے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, اور کیسے مردوں کو کیسی بیویاں ملنی چاہیے. بہت ہی اہم سبق ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری سورت کے اندر سے ایک بنیادی ٹاپک آج کے اس حصے میں. آئیے ہم آیات کو لیتے ہیں, کوشش کریں گے کہ واقعہ چونکہ اس میں ایک آنا ہے تو جہاں تک آیات ایک مفہوم کی ساتھ چلتی جائیں اس کو لے کر, پھر جو باتیں رہ جائیں گی اس کو ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے. تو فرمایا آیت نمبر 11-11, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین جاؤوا بالافک کی عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تم ہی میں سے تو ایک گروہ ہے. یہاں لفظ دیکھیے گا عفق, عفق کہتے ہیں کسی بات کو اصل سے پھیر دینا. بہتان سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے, एक ये कि आपने बैठकर किसी पे एक बात कर दी, और लफ्ज़ बुहतान भी अरबी का लफ्ज़ है, फबुही तल्लज़ी कफर, कहाँ पढ़ा है? तीसरे पारे में नमरूद के किस्से में हज़रत इब्राहिम के दलाइल देखकर वो हैरान तो रह गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने हिदायत को कबूल नहीं किया। तो उसमें क्या हुआ कि बुहतान का लफ्ज़ क्या होता है कि ऐसी बात जिसको सुनकर अगला हैरान रह जाए, बुहीता का मानी हैरान रहना होता है। तो पहला दर्जा कहते हैं बुहतान। अब मिसाल है कि आपने किसी के ऊपर एक बात की जो उसने नहीं की हुई थी, ये बुहतान हो गया। इस बात को फिर लेकर आप में से एक दूसरे पे असल से बाल से बदल कर दूसरे तक कह दें तो इसको इफ़ कहते हैं। उर्दू में इसको हम कहेंगे बात पलट देना, जैसे इधर से बात उधर ट्विस्ट कर देना। बाज़ दफ़ा लोग बात को पलट कर ट्विस्ट करते हैं, बदल देते हैं, और बात आगे से आगे जाती है। इसको एक एक्सपीरियंस से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से एक बात किसी के कान में कहिए और वो दूसरे के कहे, तीसरे के कहे, तो आखिर तक जाने तक पूछेंगे तो वो बात क्या की क्या बन चुकी होगी। और इफ़ का मानी तूफ़ान भी होता है, तो बातों का तूफ़ान। इशारा है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लगने वाले इल्ज़ाम की तरफ। उस वक्त जो लफ्ज़ है, उस वक्त जमात को कहते हैं, गिरोह को कहते हैं, यानी एक बड़ी जमात, और मजबूत के मानों में आता है गिरोह। ये जो हमारे आसाब होते हैं ना, वो भी इसी से है, आसाब मसल्स, क्योंकि ये हमारे जिस्म पर गोश्त और हड्डियों को यूँ बांध देते हैं। हमारा गोश्त अलग हो जाए हड्डियों से अगर बीच में ये मसल्स या नर्व्स ना हो, ठीक है। इसी से फिर लफ्ज़ तासुब भी है, प्रैक्टिस होना कि अपनी ही जमात और अपने ही गिरोह के लोगों को सही कहना, उसमें भी एक बांधने का मानी आता है। इस तरह जो पट्टी बांधी जाती है ज़ख्मों पर, उसको भी असबई कहते हैं, क्योंकि ये भी ज़ख्म को बांध देती है। बहरहाल अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि आपकी बीवी पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, तो ये गैरों ने नहीं लगाया, ये आप ही के अंदर का एक गिरोह है। और याद रखिए, घर का धोबी लंका डबोए वाली जो कहावत है, वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। गैरों से आपको उतनी तकलीफ़ नहीं पहुंचती जितना आपको अपने करीबियों से तकलीफ़ पहुंचती है। लेकिन तसल्लियाँ देखिए, ला तहसबूहु शर्रुल लकुम, आप इसको अपने हक़ में बुरा ना समझें। इतनी बड़ी बात और आपको कहा जा रहा है कि इसको बुरा ना समझें, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए खैर ही का वाक़िया है, वो तो खैर है आपके लिए। क्यों भाई, इतनी बड़ी बात है तो बुरा क्यों ना समझो? पहली बात देखिए, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके कि आसान तक रहो शयन व हुआ खैरुल लकुम, और अनतखी तो हिब्बु शयन व हुआ शरुल लकुम। अल्लाह सुब्हान तआला की सुन्नत है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात ले आता है बाज़ औक़ात कि जो बज़ाहर हमें बुरे लगते हैं, हम अनवांटेडली उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आने वाला वक्त बता देता है कि वो हमारे हक़ में बहुत बेहतर है। ये ज़िंदगी का असूल बनाइए, जो बात आज आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, अल्लाह ने मुझे इस मुश्किल में क्यों डाला, ये आपके हक़ में बेहतर है। ये आज से 10 साल बाद आपको पता लग सकता है, 5 साल बाद पता लग सकता है। इंसानी मामलात में हम दिन रात इस आजमाइश से गुजरते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ैसलों को दिल की खुशी से कबूल करो। बस आप कहते हैं शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला पता नहीं आपसे क्या और लेना चाहता है। आप चाहते हैं बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा, ये तो तब पता लगेगा जब एक हो गया, तो फिर आप किसी ना काम के रहेंगे। इसी तरह आप देखिए, शादी सोचते हैं कहीं और हो जाए, वहाँ नहीं होती, कहीं और हो जाती है, बड़ा दुख होता है, बाद में पता चलता है कितनी बड़ी खैर थी, अल्लाह ने मंगनी तुड़वा दी, इसमें कितनी बड़ी खैर थी, अल्लाह ने किसी शादी होके तलाक दिलवाने से बचा लिया। तो अक्लमंद इंसान वो है जो हर चीज़ को खैर समझे। यहाँ इस वाक़े में शर्रुल लकुम क्यों ना समझो, क्या खैर थी इस वाक़े में? सबसे पहली वजह इसकी क्या है कि मुनाफिक ज़ाहिर हो गए। अगर ये वाक़या ना होता तो आम लोगों को कभी अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों के बारे में पता ही ना चलता। अंदर छुपे रहते हैं वो लोग जिनके दिल में आपके बारे में बुग़्ज़ होता है, अपनों में होते हैं, आपके सामने हंसते मुस्कुराते स्माइल पास करते देते लेते भी हैं बाज़ औक़ात, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी हसद की आग होती है कि मौके पे वो फिर फूट पड़ते हैं। अल्लाह के नबी के साथ ऐसा ही हुआ। दूसरी बात, खैर इसलिए भी थी कि सब्र का मौका मिला। क्या हुआ, तकलीफ़ तो आती है, फिर क्या हुआ, थोड़े दिन का सब्र कर लेंगे तो खैर मिलेगी। तीसरी बात यह कि रिज़ल्ट बड़ा अच्छा निकला। किस सूरत में निकला? ये आज के सबक की जो पूरी आयत है ना, आयत नंबर 11 से 26 तक, ये सारी उस मौके पे नाजिल हुई कि हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरे हक़ में कुरान पाक की आयतें नाजिल होंगी। फिर एक और इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोगों के लिए नसीहत बन गया ये वाक़या। एक वाक़े की बुनियाद पर इतनी खूबसूरत तरबियत हुई, ये भी एक अगला नुक्ता नोट कर लें, कि मोमिनों की तरबियत का मौका मिला। इतनी खूबसूरत तरबियत हुई कि निखर गए, पॉलिश हो गए, जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले कि सहाबा भी इंसान थे, उनके अंदर भी शैतान आ जाता था। तो ऐसे वाक़यात की बुनियाद पर फिर अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत अखलाकी अहकामात दिए कि जिससे मोमिनों की तरबियत का मौका मिला। फिर इसी तरह से प्रोपेगंडे से बचने का तरीका सिखा दिया अल्लाह ताला ने इस आयत में। और एक और बात भी इस वाक़े के ज़रिए से हमें पता चली, और वो क्या है कि झूठे प्रोपेगंडे अहले हक को कभी नुकसान नहीं देते। सारा दिन कोई चांद सूरज की तरह मुंह करके उसको बुरा बुरा कहता रहे, एंड ऑफ द डे सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे कभी कभी सूरज के ऊपर बादल आ जाता है ना, लेकिन ज़रा सा बादल हटता है तो फिर छम छम करती हुई सूरज की किरणें सामने आती हैं। इसी तरह अच्छे से अच्छे लोगों पर भी बाज़ दफ़ा इल्ज़ाम भी लगते हैं, गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं, लोग उनके बारे में गलत सोचने भी लगते हैं। अगर वो ठीक हैं, अगर वो अच्छे हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह की ज़ात उनको ज़रूर उससे बचा लेगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, शर्त एक है कि बंदा सब्र करे। और ये भी बात इस वाक्य से खैर की निकली कि जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे बिल आखिर वही बदनाम हुए। सच को जिस तरह आँच नहीं है, इसी तरह कभी झूठ को फलाह नहीं मिल सकती। नतीजा क्या निकला कि फ़ायदा हुआ। और इससे एक और चीज़ हुई कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत सारी खूबियों से नवाजा था, उनकी एक ख़ास खूबी कुरान पाक में शामिल हो गई कि उनकी शान में कुरान पाक की आयात नाजिल हो गई। तो गोया कि ये बुरा कैसे हो सकता है जब इसमें से इतनी ज़्यादा खैर की बातें सामने आ गईं। तो लिहाजा इंसान ज़िंदगी में आने वाले ऐसे वाक़यात को अपने ऊपर लेकर हमेशा अच्छा गुमान करे, अपने नर्व्स को शट डाउन ना करे, ब्रेक डाउन ना हो जाए, उसका ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। हम ऐसी बातों के मौके पर अमूमन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बस नहीं करना। के ऐसे वक्तों पे तहम्मुल, बुर्दबारी, सब्र, अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक, अच्छे दिनों का इंतज़ार और दोस्त दुश्मन की पहचान। और ख़ास तौर पे इसमें जो हज़रत आयशा का किरदार देखें, अल्लाह के नबी की बीवी होने के नाते से तो एक दीनदार का किरदार है। इल्ज़ाम बहुत सारों पे दुनिया में लगते हैं, स्कैंडल्स सियासतदानों के भी बनते हैं और इसी तरह से आर्टिस्टों के भी बनते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि एक दिन इल्ज़ाम लग रहा होता है, अगले ही साल उसी को लोग फिर वोट दे के आगे ले आते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बुरा प्रोपेगंडा दीनदार के नाम पर प्रोपेगंडा है। शैतान को कभी भी नहीं अच्छे लगते दीन का काम करने वाले। कभी आपने कभी सोचा, सबको छोड़कर लोग मौलवियों और दीनदारों और वो चंद लोग जो दुनिया में दीन का काम कर रहे हैं उन्हीं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? उनकी तो इतनी सी भी बात इतनी बड़ी दिखेगी, और अपने बड़े बड़े काम इंसान को बहुत छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? सिर्फ शैतान चाहता क्या, इनको बदनाम करो, इनसे जान छुड़ाओ और सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाओ। ये सारे प्रोपेगंडों से बचकर जब एक इंसान अपने दीन को खालिस कर लेता है ना, वो काम का बन जाता है। सहाबे कराम पर अल्लाह के नबी को जो अंधा एतमाद था, उसकी वजह ये थी कि ऐसे मुश्किल मरहलों में सहाबा जमे रहे। अल्लाह के नबी की बीवी पर जब इल्ज़ाम लगा, तो ऐसे वक्तों में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन सहाबा ने ऐसे वक्त में भी अल्लाह के नबी का साथ नहीं छोड़ा। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने इस वाक़े के अंदर से खैर ही खैर निकाल दी। अब ये वाक़या क्या था, अहदीस में इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया। एक रिवायत आपके सामने रखती हूँ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही की ज़ुबान से, कि वो किस तरह से इस वाक़े को बयान करती हैं और अपनी कहानी ख़ुद सुनाती हैं। कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा क्या था कि आप सफ़र पर जाने लगते तो कुरा डालकर फ़ैसला करते, ठीक है, तो साथ साथ अमल की बातें नोट करते जाएं कि इस तरह का कुरा डालना जायज़ है, कि कौन आपकी बीवी में से आपके साथ जाए। ग़ज़वा बनू मुस्तलक के मौके पर कुरा मेरे नाम निकला और मैं आपके साथ गई। वापसी पर जब हम मदीना के करीब थे, एक मंजिल पर रात के वक्त रसूलुल्लाह ने पड़ाव डाला, यानी स्टॉप ओवर लिया, और अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था कि कूच की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं उठकर रफ़ा हाजत के लिए गई। याद रखिए कि उस दौर में टॉयलेट्स नहीं होते थे सफ़र में, या आम तौर पे ग़ज़र में भी औरतें दिन में नहीं जाती थीं, पर्दे के वजह से रातों को उठकर कज़ाए हाजत के लिए जाती थी टॉयलेट यूज़ करने के लिए। खैर, ये कहती है मैं चली गई। जब पलटने लगी तो क़यामगाह के करीब पहुँच कर मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का हार टूट कर गिर पड़ा। इससे पता चलता है कि ज्वेलरी पहनती थी सहाबियात भी, ठीक है। और बल्कि बाज़ रिवायत में तो आता है कि इनका अपना नहीं था, अपनी बहन का हार लेकर गई थी, तो गोया कि इसकी भी एक रुख्सत आपको मिल गई। मैं इसे तलाश करने में लग गई और इतने में काफ़िला रवाना हो गया। कायदा ये था कि मैं कूच के वक्त अपने हौद से, हौद कहते हैं वो सवारी के ऊपर रखे जाने वाला एक छोटी सी एक सीट होती है जिसके चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं, डोली कह ले, हौदज भी कहते हैं, हौद भी कहते हैं। कहती है तरीका क्या था कि जब लोगों ने कूच करना होता था तो मैं अपने हौद में बैठ जाती थी और चार आदमी से उठाकर ऊंट पर रख लेते थे। हम औरतें इस ज़माने में गज़ा की कमी के सबब बहुत हल्की फुल्की हुआ करती थी। मेरा हौदा उठाते वक्त लोगों को ये महसूस ही ना हुआ कि मैं इसमें नहीं हूँ। इतनी दुबली पतली, और कितनी उम्र थी, 13-14 साल होगी इस वक्त उनकी उम्र, तो दुबली पतली छोटी उम्र की बच्ची थी। उन्होंने बगैर उसके हौदज को उठाया और लेकर चली गई। वो बेखबरी में खाली हौदा ऊंट पर रखकर रुखसत हो गए। जब मैं हार लेकर पलटी तो वहाँ कोई ना था। आखिर अपनी चादर ओढ़कर वहीं लेट गई। ये देखिए कितना अकलमंदी का फैसला है। बस दफ़ा कहीं सफ़र में और ख़ास पे हज और उम्रे में जब लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं ना, वो उसको ढूंढ रहे, वो उसको ढूंढ रहे, एक आंख में चली, आप इधर थे, मैं उधर थी, मैं उधर थी। बेस्ट तरीका जहाँ आखिरी वक्त किसी को छोड़ा था या कमिट किया था कि यहाँ मिला करेंगे, वहाँ चुप करके बैठ के दुआएं पढ़नी शुरू कर दें। ये बहुत अकलमंदी का फैसला था इनका, क्योंकि अगर ये घूमती रहती तो कभी ना मिलती। ये सोच के ये लेट गई कि चलो, दिल में सोच लिया कि आगे जाकर जब ये लोग मुझे ना पाएंगे तो खुद ही ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो अमल की बात है, कभी अलग हों, और बच्चों को भी ये नसीहत किया करें कि कहीं हाथ अलग हुआ तो वहीं खड़े हो जाएं जहाँ आखिरी दफ़ा माँ को दिखे थे, माँ वहीं पहुँच जाएगी। इसी हालत में मुझको नींद आ गई। नींद किसको आती है ऐसे हालात में, जो अल्लाह पे अपने मामले डाल दें, अपने ऊपर लें। ज़रा काफ़िला चला गया, आप अकेली हैं, रात का वक्त हो रहा है और कोई है नहीं, तो आप तो रो रो के पता नहीं आसमान तूफान सर पे उठा देती हैं, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता और शुगर डाउन हो जाती और सर में दर्द शुरू हो जाती। जो होते होने दें। देखिए अपने आप को बिल्कुल बोनलेस बना लें, जिधर मोड़े मुड़ता जाए। इंसान की औकात इतनी है, मेरी तो इतनी है, मेरा रब मुझे जो कहेगा मैंने वही करते जाना है। बस रास्ते में अटकलें, रुकावटें, परेशानियां, तकलीफें आईं, बस सब्र कर लें कि अल्लाह ताला तूने मुझे सब्र का मौका दिया। तो हज़रत आयशा सो गई, दिल साफ था, सो गई। सुबह हुई, अब रात भर कोई मामला नहीं हुआ, सुबह हो गई, सूरज निकल आया। सुबह के वक्त सफवान बिन मुअत्तल सलमा इस जगह से गुजरे जहाँ मैं सो रही थी और मुझे देखते ही पहचान गए, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले वो मुझे बारहा देख चुके थे। यहाँ से क्या पता चला कि अज़वाज मुतहरात और सहाबियात चेहरे का पर्दा करती थी। लोग कहते हैं किधर दलील है, और ये बुखारी की रिवायतों में से रिवायत है तो लोग इसका इनकार नहीं कर सकते। क्यों? और पर्दे की आयतें कब नाजिल हुई? 5 हिजरी में। अब ये वाक़या 6 हिजरी का, तो 1 साल हो गया था इनको निकाब करते हुए। कहती हैं पर्दे की आयतों से पहले मुझे ये चूके देख चुके थे। अब मुंह पे कपड़ा रख के सो रही हैं, सहाबी पास से गुजरते हैं और वो कहती हैं कि ये बदरी सहाबियों में से थे। और आप कहते हैं बदरी सहाबा के लिए अल्लाह ने क्या कहा कि आज के बाद तुम कुछ भी करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आला मुकाम है, बदरी सहाबा के बारे में जन्नत की खुशखबरी है। इनको सुबह देर तक सोने की आदत थी। अब ये सुबह देर तक सोने की आदत क्यों थी और क्या हालात थे, ये उनकी एक ज़ाती बात है। और रिवायात में यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी ने इनको ये जिम्मेदारी दी हुई थी कि किसी भी जगह काफ़िला जब चला जाता है तो आप उसके बाद सबसे आखिर में आएँ ताकि गिरी पड़ी चीज़ों को उठा ले। कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है ना, बच्चे की चीज़ रह गई, बड़े की रह गई, दिस एंड डैट रह गई। तो कहती हैं कि इस तरह से ये उठकर देर से जब आए तो इन्होंने मुझे देखा, तो मुझे देखकर इन्होंने क्या कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको पता था कि लश्करगाह में जो भी कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ पड़ी है, उसको मैंने अब उठाना है। तो ये कहती हैं कि जब वो मेरे पास आए सहाबी और उन्होंने किसी शख्स को सोते देखा, इतना भी नहीं पता कि कौन है, मर्द है कि औरत, सोते देखा तो इन्ना लिल्ला पढ़ा। और उनकी इन्ना लिल्ला से जब मैं उठी तो मेरा मुंह देख के कहते हैं अरे रसूल की बीवी यहीं रह गई, ये जुमला बोला। इसके अलावा कहती हैं कोई बात हमारी आपस में नहीं हुई। इनकी आवाज़ से मेरी जब आँख खुली, मैंने उठकर फौरन अपने मुंह पर चादर डाल ली, उन्होंने मुझसे कोई बात ना की, लाकर अपना ऊँट मेरे पास बिठा दिया और अलग हटकर खड़े हो गए। अलग क्यों हटके खड़े हुए? क्योंकि ऊँट पे सवार होना कोई आसान नहीं होता, पर्दा खुलने का डर होता है, जिस्म नज़र आता है, तो वो शराफत की वजह से साइड पे हो गए और ये ऊँट पे सवार होने लगी। मैं ऊँट पर सवार हो गई और वो नुकेल पकड़ कर रवाना हो गए। दोपहर के करीब हमने लश्कर को जा लिया, यानी फजर के बाद निकले, जोहर से पहले वहाँ पहुँच गए। जबकि वो अभी एक जगह जाकर ठहरा ही था और लश्कर वालों को भी पता भी ना था कि मैं पीछे छूट गई हूँ। पता कब चलना था? जब वहाँ जाके उतरते, हौदज खोलते, खाली था और वहाँ रास्ते में कोई इंटरटेनमेंट तो थी नहीं कि आप क्या खाएंगी और आप क्या पिएंगी। सीधे साधे सफ़र होते थे, सीधे साधे लोग होते हैं, किसी को भी पता भी नहीं कि आयशा पीछे से आई हैं या साथ आई हैं। लेकिन कहती हैं कि इस पर बुहतान उठाने वालों ने बुहतान उठा दिए और इनमें सबसे पेश पेश अब्दुल्ला बिन उबई था, मगर मैं इससे बेखबर थी कि मुझ पर क्या बातें हो रही हैं। कुछ नहीं पता था। इसने सिर्फ उनको हजरत सुफान के साथ आते देखा है और इतने गंदे इसके अल्फाज, जहाँ तक आता है, एक रिवायत में आता है कि जब सुफान के ऊँट पर हजरत आयशा लश्करगाह में पहुँची और मालूम हुआ कि आप इस तरह पीछे छूट गई थी, इसी वक्त अब्दुल्ला बिन उबई पुकार उठा कि खुदा की कसम ये बचकर नहीं आई। लो देख लो, तुम्हारे नबी की बीवी ने रात एक और शख्स के साथ गुजारी और अब वो इसे एलानिया लिए चला आ रहा है। ये आपको उस सवाल का जवाब मिला? दौर नबी का है, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, इंसान तो इंसान ही है ना। खैर, कहती है मदीने पहुँच कर मैं बीमार हो गई और एक महीने के करीब पलंग पर पड़ी रही। शहर में इस बुख्तान की खबरें उड़ रही थी, रसूलुल्लाह के कानों तक भी बात पहुँच चुकी थी, मगर मुझे कुछ पता ना था। भोली भाली थी, ना बाहर किसी से मिली, ना गई, ना कोई आया। और डिसिप्लिन देखिए मदीना का, आज तो अल्लाह रहम करे व्हाट्सएप और वाइबर और ईमेलों में और फेसबुक पे जो खबरें लग जानी थी, कुछ भी नहीं पता इनको। कहती बस एक बात मुझे खटकती थी और वो क्या, जब मैं बीमार हुआ करती थी तो अल्लाह के नबी की जो तवज्जो मेरे साथ होती थी वो नहीं है। दिल में जब बाल आता है ना तो ज़रूर चेंज आती है। अच्छे अच्छे ताल्लुकात भी क्यों ना, इंसान का दिल खट्टा हो जाता है। कहती अब घर में आते तो बस घर वालों से ये पूछ कर कह देते, कई फतकुम, कैसी हैं ये कैसी हैं, बस हाल चाल पूछ लेते, मुझसे कोई कलाम ना करते। फिर मुझे शुभ होता कि कोई बात है ज़रूर। आखिर मैं आपसे इजाज़त लेकर अपनी माँ के घर चली गई ताकि वो मेरी तीमारदारी कर सके। और ये भी चीज़ इनके लिए तकलीफ़ दे थी कि अल्लाह के नबी ने मुझे इजाज़त दे दी। आम हालात में अल्लाह के नबी आपको ज़्यादा दिन अपने माँ बाप के घर रहने की इजाज़त नहीं देते थे, और ये मोहब्बत का अंदाज़ होता है। और बीवियों का मामला अजीब है, शौहर ना जाने दें तो भी परेशान होती हैं और जाने दें तो कहती हैं हाल ही नहीं पूछा। तो ये अल्लाह के नबी से जब पूछती हैं और अल्लाह के नबी ने इनको खिलाफ़ मामूल कहाँ चली जाए, तो इस पर भी इनको तकलीफ़ थी कि अल्लाह के नबी ने पहले तो मुझे कभी नहीं सराहने की इजाज़त दी। खैर, कहती हैं एक रोज़ रात के वक्त हाजत के लिए मैं मदीना के बाहर गई। उस वक्त तक हमारे घरों में बैतुलखला नहीं थे, हम लोग जंगल में ही जाया करते थे। मेरे साथ मिस्ता बिन उसासा की माँ भी थी, जो मेरे वालिद की खालाजाद बहन थी। किसकी खालाजाद बहन थी? अबू बकर सिद्दीक के। दूसरी रिवायत में आता है कि इस पूरे ख़ानदान की किफ़ालत अबू बकर सिद्दीक ने अपने ज़िम्मे ले रखी थी, मगर इस एहसान के बावजूद मिस्ता भी इन लोगों में शरीक हो गए जो हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ इस बोहतान को फैला रहे थे। यानी उनकी ज़ुबान से भी बात निकली। अब आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे अच्छे सहाबा से भी बाज़ दफ़ा गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो इंसान थे। रास्ते में उनको ठोकर लगी और बेसाख्ता इनकी ज़ुबान से निकला, गारत हो मिस्ता। मैंने कहा अच्छी माँ हो जो बेटे को कोसती हो, और बेटा भी वो जिसने जंगे बदर में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा बिटिया, तुझे क्या इस बातों की खबर है कुछ? कहा क्या बातें? कहा कुछ नहीं। इस पर उन्होंने सारा किस्सा सुना दिया कि तुम्हारे बारे में तो शहर भर में ये बातें फैल रही हैं, और फिर मुनाफिकीन के साथ कुछ मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए। सबसे पहले मिस्ता, अबू बकर सिद्दीक के खाला के बेटे भी थे, गरीब भी थे, मुहाजिर भी थे, और साथ ही साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक इनकी मदद भी करते थे। अब आप अपने ऊपर लें, ख़ानदान के किसी शख्स की आप टेक केयर करते हो और वो आपकी बेटी पे कोई बात कर दे, तो हमारा क्या रवैया है? इसी सबक में देखेंगे कि अल्लाह ने इनके साथ क्या मामला किया। इसी तरह हसान बिन साबित, मशहूर शायर थे, इस्लाम की हिमायत में शायरी करते थे, लेकिन इन्होंने इस मौके पर हज़रत आयशा के बारे में कुछ बातें कहीं। बाद में लोग हज़रत आयशा से कहा करते थे कि हसान बिन साबित वही है ना जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ शेर कहे थे, तो कहती नहीं, हसान बिन साबित वो हैं जो इस्लाम की हिमायत में शेर कहते थे। मैं कहती हूँ कितना मुख्तलिफ है अपने लिए जीना और इस्लाम के लिए जीना, क्योंकि आज हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो हम इसको इंजॉय ही नहीं कर पाते। आज तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में इतनी सी मुश्किल आ जाए, हम सबसे पहले इस्लाम पे बात करते हैं। वो ऐसे नहीं थे, हज़रत आयशा ने इनको भी माफ़ कर दिया। इसी तरह हमना बिनत जहश, ये कौन थी? हज़रत ज़ैनब की बहन थी, हज़रत आयशा की सौकन की बहन थी, तो उन्होंने सौकनापे की आड़ में आकर कुछ ना कुछ बात कह दी। खैर, ये कहती हैं कि मैंने जब ये कहानी सुनी, ये दास्तान सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया। वो हाजत भी भूल गई जिसके लिए आई थी, सीधी घर गई और रात भर रो रो कर काटी। یعنی اب عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے خلاف کیا رہا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھولی بھالی تھی وہ، اور مومن ہمیشہ بھولا بھالا تھا، اس کو کوئی نہیں فکر ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ خود نہیں کسی کو برا کہتا تو کوئی دوسرا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ کہہ سکتا ہوں۔ خیر کچھ عرصہ گزرا، عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول اللہ نے علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی مشورے کرتے تھے، اور گھریلو زندگی کا مسئلہ، تو حضرت اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا کہ اللہ کے نبی عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی، اور اسامہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، یعنی منہ بولے ہوتے کہہ لیں۔ خیر، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ کس پر باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے؟ رہے علی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، عورتوں کی کمی نہیں، آپ ان کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمت گار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت کر لیں۔ یہ حضرت علی کا ایک بہت اچھا جواب تھا کہ گھر کے ملازم جتنا اچھا کسی کو جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا، تو کہا کہ ان کی لونڈی کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بلا عائشہ میں کوئی ایسی باتیں تھیں۔ چنانچہ خدمت گار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی، اس نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے، کہ کوئی ان کے اندر برائی نہیں تھی، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اتنی بولی ہیں بس۔ اسی روز رسول اللہ نے خطبے میں فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے، جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ بخدا میں نے تو اپنی بیوی میں نہ تو کبھی کوئی برائی دیکھی ہے، اور نہ ہی اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی گئی، یعنی صفوان بن معطل، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر بھی نہیں آیا۔ یہ بھی نوٹ کرنے کا نقطہ ہے، غیر مرد اکیلے میں آپ گھر والوں کے پاس نہیں آتے، کام بھی ہو تو باہر سے کام کر کے بات کر کے چلے جاتے ہیں، کیا ان کو بھائی جان اور فلاں فلاں کہہ کر اندر بٹھانا اور جوس پلانا، پھر کہنا کہ گھر میں تو اب کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، اگلے سبق میں ہم اس پہ تھوڑی سی بات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خیر، جب حضرت علی نے یہ بات کہی تو حضرت اسید بن حضیر، بعض کہتے ہیں سعد بن معاذ، نے اٹھ کر کہا اللہ کے رسول، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس شخص سے بچائیں تو اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ سنتے سعد بن عبادہ اور رئیس حضرت جھوٹ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ حضرت میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن ماریں گے، یعنی قبائلی عصبیت سامنے آ گئی۔ اسید بن حضیر نے یہ بات دیکھی تو ان کو ذرا تھوڑا سا یہ برا لگا کہ بھائی ایسی بات انہوں نے کیوں کر دی، اور اس طرح ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ یہ حالات تھے مکہ کے جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اور ایسے وقتوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا حلم کیسا ہے۔ عام تھوڑ دلا غصے کا تیز شوہر ہوتا تو وہ بیوی کو کیا کیا گالیاں نہ دے دیتا۔ میں تو اس سارے واقعے میں جو خوبصورت سا اللہ کے نبی کا معاملہ دیکھتی ہوں کہ اتنا صبر اور تحمل اگر اللہ سارے شوہروں کو دے دے تو باوجود بیویاں اپنے ٹیڑھ پن کے بہت ساری گھریلو خرابیوں سے بچیں لوگ، لیکن اللہ کے نبی نے اتنے سکون سے بات کی اور یہ سب کچھ کر کرا کے آخر وہ وقت آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اور اللہ کے نبی نے آ کر حضرت عائشہ سے ایک موقع پہ پوچھا کہ عائشہ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو ہی گیا تو اللہ معافی کو قبول کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کے تو میرے آنسو تھم گئے۔ میں نے کہا کہ غلط بات باہر سے سن سن کر اتنے آپ کے کان عادی ہو گئے کہ اب میں سچ کہوں گی تو آپ نہیں مانیں گے اور جھوٹ کہوں گی تو آپ مان لیں گے، تو میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہتی ہیں جذبات اور تکلیف کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں رہا، اور میں نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، وہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے اس پہ جو لوگ گھڑتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ عائشہ، اگر تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بے گناہی ثابت کرے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر واقعی اللہ کے نبی کے اوپر وحی کی کیفیت تھی۔ کہتی مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بتا دیں گے وحی کے ذریعے کہ عائشہ سچی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وحی کے اثرات ختم ہوئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بادلوں کے چھٹنے کے بعد سورج کی روشنی ہوتی ہے، خوشی سے، کیونکہ دیکھیے اگر گھر میں لڑائی ہو، بیوی سے شوہر جھگڑے، تو شوہر کہاں خوش سوتا ہے، تو اس کا بھی تو موڈ آف ہوتا ہے، وہ بھی تو بھوکا ہی سوتا ہے نا، وہ بھی تو غصے میں ہی سوتا ہے نا۔ कि दूसरों को दुख देने वाले कभी खुश हो सकते हैं? कभी भी नहीं होते, बल्कि आप तो कहेंगे नहीं तो ना से, इनकी तो आदत है, और वो जलते कुड़ते पता नहीं रात को कितना अपना खून जला के सोते हैं। अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ थी, और जब सुलह होती है तो कहते हैं कि सुलह के बाद तो पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, और ऐसे ही लगता है कि अल्लाह के नबी इतने खुश थे और आपने कहा कि आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बेरात नाजिल की और तेरे हक़ में कुरान की आयतें नाजिल कर दी। कहती ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे हक़ में कुरान की आयतें आएंगी। कहती ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये था कि अल्लाह अपने नबी को बता देगा कि आयशा सच्ची है। जब ये बात हुई तो हज़रत आयशा की माँ ने कहा कि आयशा उठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर। तो कहती मैंने एक अदा से कहा कि मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूँ, मैं उसका क्यों ना करूँ कि जिसने ये मेरी बेगुनाही साबित की और अल्लाह की हम की। अब देखिए ना कि हमारे लिए तो अल्लाह के नबी रसूल थे ना, नबी थे, तो बीवियों के लिए शौहर भी तो थे। तो हज़रत आयशा और बाकी बीवियाँ भी कभी कभी आपसे बात जो करती थी वो बीवी बन के करती थी, ये अलग बात है कि अक्सर बात करती थी रसूल समझ के। तो इस वाक्य के अंदर अब आप देखेंगे कि कितनी गहरी बातें हैं जो हमें इस सबक के साथ सिखाई जा रही है कि जब भी कभी कहीं ऐसी कोई बात हो जाए तो ऐसे वक्तों में इंसान अपने सब्र को न जाने दे। और यहाँ से अल्लाह ताला ने ये बात भी बता दी कि जिसने इसमें जितना हिस्सा डाला उतना उसका मामला है। तो क्या कहा, ला तखसबूहु शर्रुल लकुम, इसको बुरा ना समझो। देखिए तकलीफ़ तो हुई, आप सब अपने ऊपर लेके सोचिए, जिस्म में कोई तकलीफ़ हो, आप रोज़ दर्द सहते हैं, रोज़ सहते हैं, रात को भी दर्द है, दिन को भी है। एक दिन दिल बड़ा करके आप ऑपरेशन कराने की नीयत कर लेते हैं, वो ऑपरेशन के डेज़ कितने मुश्किल होते हैं, तकलीफ़ होती है ना, पैसा भी लगता है, चीर फाड़ भी होती है, घर का निज़ाम बिगड़ता है, उसके बाद क्या होता है, एकदम सेहत हो जाती है। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे हालात आएंगे, ये जो आज आप बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में जी रहे हैं ना, ये हमेशा नहीं रहनी ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी ऐसी नहीं रहनी जैसी आज है। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और ख़ास तौर पे जब ज़िंदगी जवानी से ढलकर थोड़ी सी आगे उम्र में जाती है, शादी होती है, शादी नहीं है तो बच्चे होते हैं, हालात बदल जाते हैं। ऐसे प्रोटेक्टेड माहौल वाले बच्चे और बच्चियां जिनको पहले से उन हालात के लिए ना तैयार किया हो, बाज़ दफ़ा फिर उनके होश गुम हो जाते हैं, फिर रोते हैं बैठ के और रोती हैं बैठ के। तो हमेशा ज़िंदगी को एक रियलिटी समझें, ये फ़न टाइम नहीं है, ये फ़िल्म नहीं है, ये मूवी नहीं है, इस दुनिया जो ये रिहर्सल नहीं हो रही हमारी, किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, इसके अंदर हम हकीकत में एक हकीकत से गुजर रहे हैं और हर वक्त हम आजमाए जा रहे हैं। लिया ब्लुआ कुमैय को मकसन वाला, ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। तो अब इस वाक़े की बेस पे हम इसमें से जो बातें बाकी निकलती हैं उसको देखेंगे। अल्लाह सुबहाना ताला उस उम्मत को जहाँ ये मामला हुआ, जो खैरुल कुरून थे, बेहतरीन दौर थे, उसके अंदर से भी चंद लोगों से अगर ऐसी बातें हो गई तो उनको कहते कहते अब अल्लाह ताला हम सब को ये सारी बातें सिखा रहे हैं कि तुम क्या करो इसके मामले में, अपना हाल देखो। लिकुल्लिमरी मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्मी, हर शख्स के लिए उसमें इतना ही हिस्सा है जो उसने कमाया। इसको नोट कीजिए, एक आयशा पर इल्ज़ाम लगा, उसका आगाज़ अब्दुल्ला बिन उबई ने किया, वो तो इसका भुगतेगा इल्ज़ाम, क्योंकि वल्लज़ी तवल्ला किबरा हो, और वो जिसने उठाया इसका बड़ा बोझ, यहाँ वल्लज़ी के नीचे लिख लीजिए अब्दुल्ला बिन उबई, यानी जिसने इस बड़े बोझ को अपने कंधों पे उठाया, मुराद ये कि शुरू किया, बिगिनिंग की, इस बात का रिवाज डाला, उसके लिए तो मिनहुम लहू अजाब व नाजीम, उसके लिए तो बहुत बड़ा अजाब है। क्या पता चला इस बात से कि अब्दुल्ला बिन उबई के लिए तो है ही अजाब, जैसे काबिल ने पहला कत्ल करके दुनिया में कत्ल की रस्म डाली, तो आज दुनिया में होने वाले हर कत्ल का बवाल उस पर भी जा रहा है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई ने जो कुछ किया है वो उसको तो मिलेगा, उसका नुकसान तो होगा सो होगा, लेकिन तुम में से जिसने जितने बोल बोले, जितने नेगेटिव सेंटेंस बोले, जो कुछ किया कराया, वो सब कुछ उसको भी मिलेगा। अल्लाह सुबहाना ताला के अकाउंट्स बड़े परफेक्ट हैं, एक इशारिया के बाद, एक पॉइंट के बाद भी कोई दो लफ्ज़ डल जाते हैं ना ज़ीरो से पहले, अल्लाह क़यामत के दिन वो भी खोल के दिखा देगा। हम दुनिया में बच सकते हैं लेकिन हम आगे जाके नहीं बच सकेंगे, इसलिए लिकुल लिमरे मिन हम मकतसब मिन अल इस्मी, अमल की बात लिखिए, कभी किसी के बारे में। और इस पूरे स्नैरियो को आप एक दीनदार के नाम से सोचें, क्योंकि यहाँ स्नैरियो बिल्कुल यही था कि अल्लाह के नबी के दीन को बदनाम करना चाहते थे। देखिए अब्दुल्ला बिन अबी को आयशा से क्या लगे, सीधी साधी बोली वाली बच्ची, उन्होंने क्या कभी कहा होगा। इससे पता चलता है कि बाज़बा पर्सनल ग्रजिस नहीं होते, रिलीजियस ग्रजिस होते हैं, उसकी वजह से लोग दूसरे फरीक को बदनाम कर देते हैं। और शैतान जिस काम में हाथ डालता है, आप कुछ ट्रिक्स ऑफ शैतान मैंने जब लिखाए थे सूरह बनी इसराइल में, तो बताया था कि शैतान जो बाकी स्टेप्स में से गुजर के जब नाकाम होता है, तो दीन का काम करने वालों के खिलाफ लोगों के दिलों में बातें डालता है और उनकी जायज़ और हक बातों को भी बुरा करके दिखाता है, सिर्फ ये सोच के कि एक दफ़ा इनको बुरा कहें और फितना फैले। तो अल्लाह ताला कहते हैं हर एक का हिस्सा है, आप अपने ऊपर लें। कभी मेरे ख़ानदान में या दुनिया में या सियासी लीडरों में या किसी पे भी कोई बात होती है तो मैं उसमें कितना हिस्सा डालती हूँ। एक सेंड का बटन दबाया ना आपने अगर ऐसी किसी बात को आगे करने के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लिकुल इमरे मिनहुम मक्तसब मिन अल इस्म, ये भी गुनाह होगा। आंख के इशारे से मुस्कुरा के, आंख मार के, किसी की तरफ इशारा करके, ये है वो, इनकी बात हो रही है, ये वो है, अगर ऐसा भी कह दिया तो बात पकड़ी जाएगी। वल्लज तवल्ला किबराहू, हाँ जो बड़ा था वो तो था, इनमें से जिसने इसका बड़ा बोझ अपने सर पे लिया उसका तो मामला होगा। तो फिर करना क्या चाहिए ऐसी बातों में, आप भी कुछ सोचेंगे कि भाई दुनिया में ऐसी बातें तो होती रहती हैं और हम खबरें सुनते रहते हैं, तो ऐसे मामलात में क्या करें। तो आप यहाँ से लिस्ट बना लीजिए आई 12 से,